शांति। कल हम सब ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। बाबा ने बहुत ही स्नेह से, स्नेह भरे आवाज से और हृदय से मतलब कई बातें सुनाई। उस मुरली के ऊपर चिंतन अगर करना हो तो एक डेढ़ घंटा तो कम बहुत पड़ेगा, क्योंकि इतनी सागर की गहराई आप जानते हैं। परमात्मा को हम कहते भी है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो सागर को और सागर की गहराई को समझना बहुत कठिन बात है, इसलिए सारी मुरली का कारोबार और उसके ऊपर समझाना बहुत कठिन है। पर तो उसमें से एक बात जो है जिसके ऊपर बाबा ने कहा अभी सही, कि ऐसे जो अभी हुआ ना तूफान, आपने देखा सुना होगा सुनामी वेव्स, अर्थात समुद्र की तरंगे, जिस तरंगों का नाम सुनामी रखा हुआ जापानीज नाम है, जिसके कारण भारत के तटवर्तीय स्थान नागपट्टनम आदि जो भी तमिलनाडु के नजदीक में है, उधर थाईलैंड, सोमाली आइलैंड्स, इंडोनेशिया, उधर मालदीव्स, अंडमान निकोबार आदि आदि स्थानों पर उसके द्वारा जो भी नुकसान हुआ उसके बारे में बाबा ने कल कहा कि ऐसे जो हुए हैं, ऐसे अचानक के तूफान आदि जो भी है, वो दिन प्रतिदिन क्या होने वाला है, कम होने वाला है या बढ़ने वाला है? हाँ, बढ़ने वाला है ना। कोई समझता हो कम होने वाला हो, राजीव प्रकाश मणि जैसे हाथ खड़ा करवाते हैं ना, ऐसे मैं भी करवा लूं। जो ऐसे समझते हो कि ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे तूफान जो है वो कम होने वाले हैं, वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, मतलब सभी समझते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसे तूफान जो है, जो बाबा ने कल कहा, इस प्रकार के समस्याएं जो है वो समस्याएं बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में, इन समस्याओं के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि हम ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए समर्थ बन जाए। समस्याओं का सामना करने में एक समर्थ चाहिए, ताकत चाहिए। ताकत नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि अंतिम समय की जो दृश्य जो होंगे ना, वो इतने दुखदायक हो गए, इतने दुखदायक हो गए कि इसको देखने के लिए, सहन करने की तो बात छोड़ दो, परंतु उसको देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं होगी ना, हाँ तो क्या हो जाएगा? मेरा एक मित्र है, वो हमेशा ये कहता है कि मैं और किसी को खाली इंजेक्शन देता होगा ना, इंजेक्शन देखता है, ऐसे किसी का हाथ में या डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसको देखता है और उसको वो मूर्छित हो जाता है, फेंट हो जाता है। कहता है मेरे से इंजेक्शन किसी को दिया जाए वो भी नहीं देखा जाता है। अब एक इंजेक्शन नहीं देखा जाता है तो जब सत्युग में तो घी दूध की नदियां बहेंगी, परंतु आगे चल करके तो किसकी नदियां बहने वाली है? खून की नदियां बहने वाली है। ऐसे समय पर अगर हमारे में हिम्मत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी इसको देखने के लिए, उसका सामना करने के लिए, तो भी फायदा क्या? बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही पहले पहले ब्रह्मा बाबा ने जो साक्षात्कार किया, आप सबको मालूम है, बाबा ने पहले पहले साक्षात्कार किया जिसके अंदर क्या हो गया, आकाश के ऊपर बाबा ने देखा कि आकाश जैसा इतना बड़ा, जैसे टेलीविजन का स्क्रीन है, ऐसा सारा आकाश जैसे कि एक टेलीविजन स्क्रीन बन गया। और उसके ऊपर पहले एक दूसरे की हत्या करने वाले, एक दूसरे की मारने वाले, एटम बम आदि बॉम्ब गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, खून की नदियां बह रही है, इतना मतलब दुखद सीन जो है वो सामने में बाबा ने देखा। तो बाबा भी हलचल में आ गए कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। बाबा को भी मन में बहुत दुख हुआ और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो दृश्य गायब हो गया। और थोड़े समय के बाद आकाश में से जैसे सितारे जमीन पर गिर रहे हैं, और जैसे जमीन पर आए और उसमें से सितारों से फरिश्ते समान देवता वहीं बाहर निकले, और फिर देवताओं का रास मंडल देखा, और उसको देख करके बाबा को अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा को उसको देखने की इच्छा हुई। और फिर बाबा ने वो आकाशवाणी जैसे आवाज सुना कि इस प्रकार का विश्व परिवर्तन के लिए तुम्हें निमित्त बनना होगा, ऐसा वो पहला पहला साक्षात्कार का दृश्य देखा। और दृश्य देखते ही बाबा ने ऐसा हाथ खड़ा करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए लायक नहीं हूं। तो बाबा ने पहले से ही पहले दृश्य से ही ऐसा जो धरती कंप आदि जो भी है उसके बारे में बता दिया है कि ऐसा विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त बातें होने वाली है, पहले से ही बताया हुआ है। हमारे कल्पवृक्ष के चित्र के अंदर भी बाबा ने बताया हुआ है कि विश्व परिवर्तन के लिए तीन बातें मुख्य होगी। पहली बात तो होगी कुदरती आपत्तियां, नेचुरल कैलमिटीज, ये कल बाबा ने जो कहा भूकंप आदि जो भी है सृष्टि के कनेक्शन में पांच तत्व जो है, बाबा कई बार कह रहे कि हमारे एडवांस पार्टी वाले भी कहते हैं कि कब तक हम इंतजार करें। प्रकृति के पांच तत्व जो है, एक बार हमारी संदेशी बहन वहां गई थी बाबा के पास, गुलजार दादी जब गई तो उसने बाबा के पास पांच व्यक्तियों को देखा तो वो समझ नहीं सकी ये कौन पांच व्यक्ति है। तो उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा ये कौन है? तो बाबा ने कहा कि ये पांच तत्व जो है वो शरीर आकारी बनकर के आए हुए हैं और ये कहते हैं कि हम अपना कार्य कब शुरू करें। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा है कि प्रकृति भी अभी थक गई है, प्रकृति भी थक गई है और कह रही है कि चलो हमको अपना कार्य करना है। तो ये हो गया सिविल वॉर्स, अरे अपने नेचुरल कैलमिटीज, प्रकृति के द्वारा कारोबार होना, प्रकृति के पांच तत्वों के द्वारा। हाँ, बाबा ने पहले भी बताया हुआ है कि अभी तो एक तत्व जो है उसके कारण इतना नुकसान हुआ, तो पांच तत्व इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कार्य जो है विश्व परिवर्तन के निमित्त वो है नेचुरल कैलमिटीज, दूसरी है सिविल वॉर्स, आपस में लड़ाई झगड़े करना, रायट्स आदि जो भी होते हैं, दो साल एक डेढ़ साल पहले गुजरात में हुआ, ऐसा कई जगह पर होता रहता है। तो जो रायट्स जो होते हैं ऐसे और भी जो सिविल वॉर्स जो है एक दूसरे की, क्योंकि गरीबी बहुत बढ़ती जाएंगी और ऐसे सिविल वॉर्स अपने ऐसे नेचुरल कैलमिटीज आदि आएंगी तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब तो सरकार ने जाकर के मेहनत किया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर भारत सरकार के इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाजों के द्वारा वहां पर डाले गए फूड पैकेट डाले और भी कई चीजें दिया, वो सब कुछ अभी तो हो सका। विदेश के भी लोगों ने आकर के सहाय दिया, सब कुछ हो सका। तो जब होलसेल में होगा, सारी सृष्टि के ऊपर इसका कारोबार होगा तो क्या होगा? तो आपस में लुटपाट होगी, ऐसे चोरी करेंगे, क्या क्या लोग करेंगे, सिविल वॉर्स, एक दूसरे को इस प्रकार से गले काटने का इस प्रकार से कारोबार होगा। और तीसरा जो होगा बाबा ने कहा हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर। माना नेचुरल कैलमिटीज जो है पांच तत्वों के द्वारा हो गई, सिविल वॉर जो है हम मनुष्य आत्माओं के द्वारा झगड़े के कारण होगा, और हम दोनों के सिविल वॉर मतलब हम मनुष्यों के और प्रकृति के दोनों के मिला जुला कारोबार जो होगा वो होगा इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, जिसके अंदर एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब तो पांच तत्वों के आधार पर ही बना हुआ है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए मनुष्य आत्मा है। तो मनुष्य आत्माओं की बुद्धि और पांच तत्व दोनों को मिलजुल करके जो कार्य होगा वो इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर होगी। एटम बॉम्ब कितना विनाशक हो सकता है, वो तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जापान में जब डाले गए और कितने लाखों लोग मर गए, दो एटम बॉम्ब गिरने से कितने लाखों लोग मर गए, और उसके कारण जापान के शहंशाह ने फौरन शरणागति स्वीकार कर लिया, इतने ज्यादा एटम बॉम्ब गिराएंगे तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने शरणागति स्वीकार लिया और अपनी हार मान लिया। इसकी भेंट में कुदरत में कितनी ताकत है, अभी जो सुनामी वेव्स जिसको कहते हैं, अभी जो धरतीकंप के कारण जो हुआ, जिसके कारण जो समुद्र में तरंगे उठी हैं, वो तरंगे 50 मीटर से 100 मीटर तक ऊंची हाइट में, हाँ, इतने ऊंची ऊंची जबरदस्त वो हाइट में, जहां से शुरू हुई वहां पर इतनी ऊंची हाइट में तरंगे उछली हुई है। 50 मीटर माना 150 फीट हुआ, 150 फीट माना एक फ्लोर मकान का होता है, एक फ्लोर एक मंजिल 10 फुट की होती है, तो 50 मीटर माना 150 फुट माना कितनी 15 मंजिल, 15 मंजिल से 50 से 100 मीटर तक ऊंची, 100 मीटर अगर गिनती करो 300 फीट हुई, माना 15 मंजिल से 30 मंजिल तक ऊंची, इतनी जोर से तरंगे, इतनी ऊंची, और उसकी स्पीड 700 से 800 किलोमीटर पर अवर, श्रीलंका से करीब 1200 किलोमीटर दूर ये सुनामी वेव्स जो है, धरती कंप जो है वो हुआ, और 1.25 घंटे में उसके जो तरंगे जो है इतनी स्पीड से आए, 1.25 घंटे में श्रीलंका तक पहुंच गए, 1.25 घंटे में। माना एक एरोप्लेन जो होता है बॉम्बे से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता आदि जहां भी जाते हैं, आजकल जो एरोप्लेन जो है सामान्य एरोप्लेन जो है एयरबस के, वो 700-800 किलोमीटर की स्पीड जा रहे हैं। तो एक एरोप्लेन जेट एरोप्लेन की स्पीड से वो तरंगे आगे बढ़ी, हा? कितनी ऊंची 15 मंजिल माना 150 फीट से 300 फीट, इतनी ऊंची जबरदस्त आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हमारे पास तो इंटरनेट में सारे ही मेवीज आदि के आया हुआ है, कितना जोर से आ रहा है आप अंदाज लगाओ, आपके सामने में 150 फीट से 300 फीट ऊंचा पहाड़ी जितना, इतना पहाड़ जैसा पानी जोर से 800 किलोमीटर की स्पीड से आपके सामने आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमने टेलीविजन में देखा है कि शहर ऐसा खड़ा हुआ था, सामान्य रूप से सब कारोबार हो रहा है, सुबह 9:30 बजे हुए और पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, 5 मिनट में तो क्या हो गया, वो सारा ही मकान उसके शहर जो है वो तबाह हो गया। ये मोटर कार जो होती है ना, मोटर कार वो जैसे कि घास घास होता है, आप फू करो और घास कैसे उड़ता है, इस प्रकार से ऐसे घास के तिनके की माफिक जो है मोटर आदि जो भी है इतना वो घिसेट करके लेके गया, तरंगे इतने पावरफुल तरंगे थे जिसके बारे में वैज्ञानिक लोगों ने अंदाज लगाया हुआ है, तो अंदाज ही है कि कम से कम 1000 एटम बॉम्ब से 2000 एटम बॉम्ब एक साथ में फूटते हैं, इसमें जितनी ताकत होती है 1000 एटम बॉम्ब से 2000 एटम बॉम्ब में जितनी ताकत होती है, इतनी ताकत से ये पृथ्वी का एक झटका, एक झटके में, कुदरत का एक झटके में कितनी ताकत, 1000 एटम बॉम्ब से 2000 एटम बॉम्ब इतनी जितनी ताकत वाला ये भूकंप था और तरंगे इतनी उछली, तो कुदरत में कितनी ताकत है, एक ही झटका जो है, एक ही झटके के अंदर 1000 से 2000 एटम बॉम्ब जितनी ताकत धरती के एक झटके में हुआ, तो आप समझ सकते हैं कुदरत में कितनी ताकत है, और उसकी भेंट में हम आत्माओं की क्या ताकत है, कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हमारे पास आया है ईमेल में एक वहां फुकेट करके एक आइलैंड है, वो फुकेट करके आइलैंड के ऊपर एक भाई अपने परिवार सहित गया हुआ था, जो परिवार के सहित गया हुआ था, होटल में रहा हुआ था, सामने ही समुद्र था और सेकंड मंजिल के ऊपर वो लोग रहे हुए थे दूसरी मंजिल पर, और वो अपने बच्चों को कह रहा है चलो जल्दी उठो जल्दी उठो, अपने को नाश्ता करने को जाना है, तो नाश्ता भी जो है ना फ्रंट में था, फ्रंट में माना समुद्र किनारे के साइड में था, परंतु बच्चे उठे नहीं थे, बैठे हुए थे, कोई सोया हुआ था, कोई स्नान कर रहा था, 9:30 बज गए थे। इतने में ही जोर से तरंग आई, तरंग आई तो जो नाश्ते करने के लिए वहां फ्रंट में टेरेस जो थी, छत थी, उसके ऊपर जो बैठे हुए थे वो तो सब के सब चले गए, और इनके अंदर भी मकान में पानी आया परंतु अंदर थे, और दरवाजा खुला था तो पानी आकर के चला गया। इन लोगों ने फर्नीचर गाड़ी को पकड़ करके रखा और थोड़ा जैसे पानी गया तो बाहर निकले, मकान तो काफी नुकसान हो गया था। दौड़ते दौड़ते वो लोग जो है दूर पहाड़ी थी उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और पहुंच रहे हैं इतने में तो दूसरी तरंग आई। क्या है, दोनों तरंग के बीच में आधा आधा घंटे का डिफरेंस रहता है, कभी आधा घंटा कभी पौने घंटे का। एक साथ में वो तरंग एक के बाद एक पांच पांच मिनट पर नहीं आती है, आधे घंटे पौने घंटा एक एक घंटे के डिस्टेंस पर वो तरंग आती है। फिर इतने में दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे होता रहा। और इसके कारण उन्होंने बताया कि वो एक घंटे डेढ़ एक दो घंटे के अंदर काफी नुकसान हो गया। और फिर तरंगे गई, उसके बाद वो वापस वो होटल की तरफ आए। होटल तरफ आए तो होटल तो खाली खाली काफी नुकसान में खत्म हो गई थी, और कई लोग मरे हुए थे, खींचे हुए थे। और समुद्र में जिन्होंने समुद्र का अनुभव किया होगा, हमने तो किया हुआ है, समुद्र की तरंग जितनी फोर्स से आती है ना, इतनी ही फोर्स से वापस पानी जाता है। अगर आप वहां पर खड़े रहो ना, तो आपने बराबर अपने आप को संभाल करके नहीं रखा हुआ होगा, तो साधारण तरंग जो होती है ना, वो भी आपको वापस समुद्र के अंदर खींच के लेके जाती है। जिन्होंने समुद्र किनारे काम किया हुआ होगा उनको मालूम होगा, हम तो बॉम्बे में रहते हैं, अज्ञान काल में हमने समुद्र में बहुत स्नान किया है, हमने देखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में भक्ति का बहुत प्रभाव था। जब जब सूर्य ग्रहण या चंद्रमा का ग्रहण होता था ना, तो हम लोग उतना टाइम समुद्र में जाते थे, स्नान करते थे और पूजा पाठ करते थे। हमको मालूम है ज्यादा करके चंद्र ग्रहण जो है ना पूर्णिमा के दिन होता है, और पूर्णिमा के दिन ही समुद्र में जो तरंगे आती है वो ज्यादा आती है, पावरफुल आती है। और जितनी पावर से तरंग आती है उतनी ही ताकत से फोर्स से आपको खींच करके लेके जाती है। तो अभी भी जितनी पावरफुल तरंगे आई उतने ही लोगों को खींच के गई। ये तो जितने बच गए, जो जिसकी बॉडी वहां जमीन पर रही वही मिला हुआ है। इन तरंगों में इतना साथ में कचरा भी आता है पृथ्वी के ऊपर किनारे ऊपर तट के ऊपर। तो अभी जो सुनामी वेव्स जो आए जिसके कारण उसके अंदर रेती थी, सैंड जिसको कहते हैं, समुद्र के अंदर रेती होती है ना, वो रेती छोड़ करके तरंगे वापस गई। तो कई जगह पर तो 10-10 12-12 फीट रेती वहां जम गई है, सैंड 12-12 फीट तक रेती जो है जम गई है। तो और इसके कारण अभी जितने जो 1.5 लाख जितने मनुष्य जो मरे हुए मालूम पड़ा हुआ है, वो तो जिनकी बॉडी मिली हुई है उनको, जो रेती के अंदर जिनकी बॉडी दबी हुई है वो कितनी दबी हुई है किसी को मालूम नहीं है। 10 फुट रेती आपके ऊपर, हाँ सिर के ऊपर 10 फुट रेती हो, रेती का भी कितना वजन होता है। तो उसके कारण उसके ऊपर अंदर रेती में दबे हुए, उसमें अनुभव में लिखा हुआ है कि वो लोग बाद में जाकर के डेड बॉडीज को उठा करके एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया और वो खड्डे में बॉडी डालते गए। एक जगह पर उन्होंने देखा एक खड़ी इतना गर्दन नहीं, इतनी ऊपर का ही सिर बाकी था, उन्होंने समझा कि बाकी का सिर अंदर दबा हुआ। तो वहां जाकर के देखा तो खाली सिर ही था, बाकी अंदर का कहां खींच के टूट गए कहां चला गया मालूम नहीं। इतने वो दर्दनाक भयंकर सीन होता है। और फिर वो बॉडी जो वहां आते थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोजिशन शुरू होता है, और उसके कारण उसकी जो दुर्गंध जो होती है सहन नहीं कर सकते। इन्होंने तो बॉडी को सबको खड्डे बड़े बड़े खड्डे में जाकर के डालना शुरू, बुलडोजर आया, बुलडोजर से खड्डा डाला बनाया और उसके अंदर बॉडी डाल करके उसके ऊपर मट्टी डाल दिया। और इस प्रकार से काफी लोगों की जो भी मर गए थे, थाईलैंड में अकेले में 1,14,000 लोग मर गए थे, उसको आज तक अब तक जो है उसकी दफन क्रिया की हुई है थाईलैंड में। इस थाईलैंड के अंदर 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक अकेले थाईलैंड के अंदर। इतना ही सुमात्रा में कितना नुकसान हुआ, भारत में नुकसान हुआ है, मालदीव आइलैंड जो है उसमें से तो कहीं जो है उसके मालदीव आइलैंड में 1400 आइलैंड्स हैं, उसमें से कई आइलैंड्स तो पानी के अंदर चले गए। इतना पावरफुल वो था, कई लोग मर गए, कितना मर गए उसका अंदाज ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि गिनती कौन करेगा, सबके परिवार में से कोई न कोई मर गया है, इस प्रकार से हुआ है। काफी नुकसान अरबों डॉलर का हुआ है, अरबों क्या खरबों की जितना कहेंगे इतना हुआ है नुकसान, और लिखा हुआ है अखबार वालों ने कि इतना नुकसान जो हुआ है उस नुकसान से बाहर आने में कई साल बीत जाएंगे, तब वो शहर वो देश जो है फिर से आबाद हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक कुदरत का एक झटका आया, कोई चमाट लगा दिया ना, एक चमाट लगाओ तो कितना नुकसान हुआ, इस कुदरत ने हम आत्माओं को एक चमाट लगाई है और इतना भयंकर भयानक हृदय को दर्द और दुख देने वाला कारोबार हुआ है, कितनी ताकत होगी इसके कारण। ये जो अर्थवेग जो हुआ है और सुनामी वेव्स तरंगे जो आई है उसके कारण ज्ञान की कई पॉइंट सिद्ध हुई है। पहले हम किसी को कहते थे ना कि विनाश होने वाला है तो लोग हंसते थे, 2 साल पहले ही अपने स्पार्क के द्वारा यज्ञ का जो स्पार्क रिसर्च बॉडी है उसके द्वारा सर्वे किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, माना इस प्रकार की आपत्तियां आएंगी, तो पहला सवाल उसमें यही था कि क्या आप समझते हो कि ऐसी विनाशक आपत्तियां आ सकती है, ऐसी विनाशक आपत्तियां आ सकती है, ऐसा सवाल पहला ही था। तो कई लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब गपोड़े हैं, ऐसी विनाशक ताकत, ऐसी विनाशक बातें होने वाली नहीं है। माना विनाश के अंदर 50-60% लोग अभी 2 साल पहले तक भी लोग विनाश के बारे में, विनाश के कार्य में लोगों को श्रद्धा नहीं थी, जबकि हम लोगों को तो बाबा ने 1937 से कह दिया कि ऐसा विश्व परिवर्तन के लिए विनाशक कार्य होने वाला है। उसकी भेंट में 2 वर्ष पहले भी कई लोग विनाश की बात को नहीं मानते थे, और आज जितना आज का भी मैंने अखबार खोला, सभी अखबारों में यही आता है, ये ऐसे सुनामी वेव्स जो है हमारे पास आ जाए तो क्या होगा। बाबा ने शुरू से ही कहा हुआ है बॉम्बे वालों के लिए, मालूम है ना बॉम्बे का भविष्य क्या बोला हुआ है, बहने माताएं बोलो बॉम्बे के बारे में क्या कहा है, बॉम्बे पानी में जाने वाला है, ऐसा है बोला है ना महादेव बहन, बॉम्बे पानी में जाने वाला है, बॉम्बे मन बॉम्बे का तो एक निमित्त बाबा ने नाम दिया हुआ है, परंतु इसके आधार पर यही है कि जो समुद्र किनारे रहने वाले जो है, जो बड़े बड़े शहर है, वहाँ सिडनी है, मेलबोर्न है आदि आदि, वहाँ न्यूयॉर्क है, उधर लॉस एंजलिस में बहुत शहर है, जो भी है जितने भी शहर समुद्र किनारे है ना, इन सब के बारे में बाबा ने ये बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे सब पानी में जाने वाला है। तो बाबा ने तो बता दिया है, अब अखबारों में रोज चर्चा यही आती है, बॉम्बे में हम रहते हैं तो बॉम्बे के अखबारों में आता है कि अगर ये सुनामी वेव्स जो है 150 फीट ऊंचा पानी का जोर से तरंग आ जाए, 150 से 300 फुट ऊंचा पानी में तरंग आ जाए तो बॉम्बे का क्या होगा। माना जो 2 साल पहले भी जो विनाश को नहीं मानने वाले थे, मैं समझता हूँ आज ये एक ही कुदरत ने एक झटका लगाया, एक चमाट लगाई और सबकी बुद्धि ठिकाने आ गई है कि ऐसा विनाशक कार्य हो सकता है। दुनिया में जो अज्ञानी कहो जो भी कहो, अज्ञानी लोग विनाश के बारे में मानते नहीं थे, आज सबने मानना शुरू कर दिया है और सब कहते हैं अभी आने वाला है, अभी होने वाला है, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे तरंगे आएंगे, कभी कहते हैं जून महीने में आएंगे, कभी अप्रैल महीने में आएंगे। अब जितने भी ज्योतिषी है ना, वो सब ज्योतिषी अब कहने लग गए कि हमने भी पहले कहा था, अभी भी हम कह रहे हैं ऐसा होने वाला है, तूफान आने वाला है, ऐसा होगा। विज्ञान भी मानता है और ये विज्ञान की बातों को भी इसने सिद्ध किया है। विज्ञान में भी मानते हैं अभी पृथ्वी ऐसी, उत्तर ध्रुव जो है ऊपर ऐसा है, पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए सीधी, परंतु उसका जो अंदर जो चुंबकीय ध्रुव है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक उत्तर या फिजिकल ध्रुव, उत्तर ध्रुव फिजिकल, और दूसरा उसके अंदर पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है। जिन्होंने मैग्नेट का स्टडी किया हुआ होगा उनको मालूम होगा मैग्नेट ऐसे घूमता है नॉर्थ साउथ, ऐसे पृथ्वी में ऐसा वो ऐसा टेढ़ा रहता है मैग्नेट, पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है इसके कारण वो खींचता है मैग्नेट को, ऐसा टेढ़ा रहता है। तो ओरिजिनल जो मैग्नेट है उत्तर ध्रुव है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, उसके बीच में जिसको ज्योमेट्री में कहते हैं 23.5 डिग्री का वो ऐसा एंगल है, 23.5 डिग्री का। और उसके बारे में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक जमाने में दोनों एक ठिकाने थे, है ना, फिजिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों एक साथ में थे। पीछे बाद में पृथ्वी के अंदर जो है ऐसे भूकंप आदि जो आए जिसके कारण क्या हो गया कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ खिसक गया। कल ही टेलीविजन में दिखा रहे थे कच्छ के नजदीक एक शहर था, वो शहर बहुत बड़ा काफी नामी ग्रामी शहर था और वहां पर व्यापारी लोग जाते थे अपने चीजें बेचने के लिए और आगे के लिए, और दूसरे व्यापारी आते थे खरीद करके लेके जाते थे। और उसमें बताया हुआ है कि 1786 के अंदर वहां बहुत बड़ा भूकंप आया, सुनामी वेव उधर आए और सारे ही के सारा ही शहर जो है वो दब गया। और वहां पर भूस्तशास्त्री वाले गए हुए हैं और वहां जमीन से अंदर से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शहर पहले 200 साल पहले ही बहुत बड़ा शहर होने वाला होगा। कच्छ एक जमाने में था, बहुत प्रसिद्ध था व्यापार आदि के लिए, वो सारा ही तबाह हो गया। इस प्रकार से कई बातें अभी वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। दूसरे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि एटम बम जो है मनुष्यों की आबादी के ऊपर और इसको नहीं गिराओ, परंतु उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर 5 एटम बम उत्तर ध्रुव में और 5 एटम बम दक्षिण ध्रुव में ऐसे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, एटम बम में गर्मी बहुत होती है, गर्मी और एटमिक हीट जिसको कहते हैं वो इतनी गर्म हो जाएंगी, इसके कारण जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो बर्फ है आइस जिसको जमा हुआ है वो बर्फ का आपको मालूम है ना, सबको मालूम है बर्फ गर्म होता है तो क्या होता है, बर्फ का पानी हो जाता है। तो वो जो बर्फ जो जमा हुआ है वो पानी हो जाएगा और उस पानी के कारण समुद्र जो है ना, समुद्र का जो लेवल जो है सी वाटर लेवल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो समुद्र का पानी का लेवल जो है 100 फीट ऊंचा हो जाएगा। 100 फीट ऊंचा हो जाए तो क्या हो जाएगा, जितने भी समुद्र किनारे बॉम्बे जैसे जो भी है बड़े शहर, मद्रास चेन्नई जो है, हिंदुस्तान में भी बहुत है, श्रीलंका में कोलंबो आदि है, और काफी दुनिया के शहर जो है समुद्र किनारे बसे हुए हैं, वो सब जगह पर 100 फुट पानी आ जाए, 100 फुट पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा, सारी इकोनॉमी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल आदि जो भी है समुद्र से निकालते हैं जमीन से निकालते हैं वो तो सारा ही फ्लडेड हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, मतलब ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, ऑयल नहीं मिले जो भी नहीं, पेट्रोल नहीं मिले, एरोप्लेन नहीं चलेंगे, स्टीमर नहीं चलेंगे, दवाई का फैक्ट्रीज नहीं चलेंगे, बीमार जो होंगे जिसको कईयों को डायबिटीज होगा रोज उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो डायबिटीज वाला बेचारा क्या करेगा, दवाई नहीं होंगी तो इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधि वो सब आएंगे। और इस प्रकार से काफी इस प्रकार की बातें होने वाली है। प्रश्न ये है कि ऐसी समस्याएं जो आएंगी उसके लिए हम तैयार हैं। अभी तो बाबा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा 1 मास का टाइम देता हूं, 1 मास के अंदर इस प्रकार से अपनी स्थिति को बनाओ और बाबा फिर प्राइज देंगे, ये सब हो सकता है, पर ये सब शांति समय की सेवा है। अशांति समय की सेवाओं के लिए हम तैयार है, जैसे समुद्र के अंदर के वाहन अलग है और पृथ्वी के ऊपर के वाहन अलग है। आपकी मोटर कार आप समुद्र में लेके जाओ तो क्या होगा, समुद्र में मोटर कार का क्या होगा, यहाँ आए हैं कि बहन भाई बस में आए हुए हैं, ये बस समुद्र में लेके जाओ तो बस क्या समुद्र में चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना। इसी प्रकार से ईश्वरीय सेवा में भी ऐसा ही है, शांति समय की सेवाएं और अशांति समय की सेवाएं, ऐसी कुदरती आपत्तियों के समय की सेवाएं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप प्रदर्शनी करते हो अभी, जहां अभी अशांति हुई है, सुनामी वेव्स जहां आए हो वहां जाकर के प्रदर्शनी लगाओ और उनको कहो राजयोग शिविर करने के लिए आओ, कोई आएगा क्या? कौन वहां कहो हम शिविर करना चाहते हैं, हम रिट्रीट करना चाहते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, हाँ हम राजयोग शिविर करना चाहते हैं, सबको कहेंगे आओ 7 दिन का कोर्स करो, क्या होगा? ये आज के हमारे जितने भी ईश्वरीय सेवा के साधन है वो सभी शांति समय की सेवा के साधन है। अशांति के समय की सेवा के साधन हमारे पास कहाँ है? है हमारे पास कोई भी सेवा केंद्र है ऐसा जिसके पास अशांति के समय की सेवा करने के लिए साधन बने हुए हो? हमारी जितनी भी ईश्वरीय सेवाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, वो सभी शांति समय के साधन या साधनाएं हैं। अशांति समय में क्या कर सकेंगे? योग भी आपका नहीं लगेगा। लोग ऐसे मरते हुए होंगे, ऐसे मरते हुए समय के आपका लिए मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, ऐसे आप बैठे होंगे ना, आपका योग परमात्मा के साथ नहीं लगेगा, लोग आपको देख करके हंसेंगे करेंगे, ये क्या है? ऐसे लोग मर रहे हैं और उस टाइम पर आप एक कोने में बैठकर के मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, कैसे होगा? आपका योग नहीं लगेगा। हमारे पास जितने भी सेवा के साधन है वो शांति समय की सेवा के साधन है। अशांति के समय पर न प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे, न कॉन्फ्रेंस हो सकेगा, नहीं कुछ नहीं हो सकेगा। उस समय की ईश्वरीय सेवाएं के साधन हमने कहाँ डेवलप किए? कल के ही अखबार में है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब ऐसे विनाशक प्रसंग हो जाए उस समय पर समाज के अंदर सुख शांति और समाज के अंदर व्यवस्था ठीक रीत से चले, उसकी लोगों को ट्रेनिंग देने का गुजरात के अंदर एक शहर है भावनगर, उनकी म्युनिसिपालिटी के मेयर ने कहा हुआ है कि सारी दुनिया के अंदर पहली ये म्युनिसिपालिटी है कि जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स अपने नागरिकों के लिए शुरू किया है। इन्होंने सारे शहर को अलग अलग वार्ड में बांट दिया है, सारी डिटेल्स अखबार में आई है। इन्होंने सारे शहर को अलग अलग वार्ड में बांट दिया है और अलग अलग वार्ड के अंदर सभी जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। जैसे और प्रकार की कमेटी होती है ना, उस प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। और वो कमेटी एक एक कमेटी के अंदर 15 व्यक्तियों को रखा है और सबको सिखा रहे हैं कि किसी का हाथ टूट जाए तो पट्टी मलम पट्टी कैसे करने की, वो सारी बातें, मतलब ऐसे समय पर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, मकान टूट जाए तो क्या होना चाहिए, एक्सीडेंट में किसी को कुछ भी हाथ पांव टूट जाए तो क्या होना चाहिए, इस प्रकार की ऐसे ही आपत्तियों के समय पर किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से और लोगों को शारीरिक जो त्रास दुख आदि जो भी हुआ है उस समय पर मदद कैसे करें, उसके लिए इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्सेज शुरू किया हुआ है, कमिटियां बनाई है। अब दुनिया के अज्ञानी लोगों ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कारोबार किया है। हम लोग सिखाते हैं, अभी क्लासेस हमारे चलते हैं, कौन से कोर्स चलता है? SML सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का प्रोग्राम। हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स चल रहा है, हमारे पास और भी कई प्रकार के कोर्सेज, 7 दिन का कोर्स, राजयोग शिविर, ये सब चल रहे हैं। और हमारे पास हमने क्या अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू किया है? आज के दिन सारी मानव समाज जो है ये मानने के लिए तैयार हो गया कि विनाश हो सकता है। जब ऐसे विनाश हो सकता है, ऐसे लोगों के मन में अभी ये विश्वास बैठ गया है, उस समय पर जैसे कल भी बाबा ने कहा ऐसे दुखी आदि जो भी है, भयभीत हो गए लोग जो है, उसको भयभीत उसके दुख अशांति उसको दूर करने के लिए आप बच्चों को कदम उठाना चाहिए। बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि बच्चे अभी बेहद में आओ, कहा या नहीं, हम अपने सेंटरों के उसके ऊपर ही रुके हुए, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी हृदय और इस सब बातों में रहे हुए हैं। और बाबा ने कल कहा कि अभी बच्चे बेहद में आओ, इतना विशाल कार्य जो है, बाबा ने कल भी कहा कोई ऐसा उलेना ना दे कि मुझे परमात्मा का संदेश नहीं मिला, डबल फॉरेनर्स के लिए बाबा ने कहा। तो ऐसे समय के लिए ऐसे विनाशक शक्ति जब समाज के ऊपर आएंगी, ऐसे समय के लिए हमारे पास आप सबको नहीं लगता है कि हमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू करने चाहिए। बाबा ने जो कल कहा ना, लोगों में भय बहुत है, कहा कि नहीं, सुना है ना सबने, भय की बातें कही, अशांति बहुत है, दुख बहुत है, तीन बातें बाबा ने कही। तो ऐसे लोगों के अंदर भय, दुख और अशांति जो है उसको दूर करने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि त्रिकाल दृष्टि बाप का साथ कहो, सहाय को, मदद को हमारे को ही है, दुनिया वालों को तो है नहीं, दुनिया वाले तो भयभीत हो गए हुए हैं। तो दुनिया वालों के सामने रखने के लिए, मैं तो हमारी टीचर्स बहने यहाँ, जो हमारे बुद्धिमान भाई बहने जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे कोर्स डेवलप करो जो अशांति के समय की सेवाओं के कोर्सेज हमको डेवलप करना पड़ेगा। क्या विधि करनी चाहिए, साधनाएं क्या होनी चाहिए, साधन क्या होने चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। इनसे क्या होगा, उस समय पर ईश्वरीय सेवाएं उसके उस साधनों के द्वारा होगा। उस समय पर आप जाकर के गोवा प्रदर्शनी करने के लिए आए हैं, प्रोजेक्टर शो करेंगे, क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, लोग और ही आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे। भयभीत लोगों की सेवा कैसे किया जाए, दुखी लोगों की सेवा कैसे किया जाए, साधारण दुखी लोगों की भी सेवा, कहीं जगह पर किसी के घर में मृत्यु होती है तो क्या होता है, बहने वहां जाती है और मृत्यु के ऊपर प्रवचन कर करके जिसके घर में मृत्यु हुआ है उसको शांति देती है। पहले जमाने में गरुड़ पुराण आदि आदि पढ़ते थे जिसके कारण उनके घर में शांति हो जाए। आजकल कई जगह पर, कई सेंटरों के ऊपर बहनों को निमंत्रण मिलता है मृत्यु प्रवचन करने के लिए। मृत्यु प्रवचन माना मारने के लिए नहीं, परंतु जिसके घर में मृत्यु हुआ है, जहां दुख हुआ है, दुख का वातावरण है, उसका दुख का वातावरण दूर करने के लिए जो प्रवचन करने के लिए बुलाते हैं। इतनी थोड़ी कुछ बातें हमारे कई सेंटरों पर बहनों को आती है, परंतु विशाल स्टेज पर विशाल कारोबार होगा तब क्या होगा। जेल के अंदर अभी बॉम्बे में पिछले शनिवार को ब्रह्मा भोजन था, तो वहां की एक जेल है जिसमें 3000 कैदी है। उस कैदी के जो बड़ी, जो सबसे बड़ी सुपरिंटेंडेंट ऑफ दैट जो जेल के, वो बहन आईपीएस ऑफिसर थी, वो कह रहे थे कि बाहर की दुनिया की अलग है और जेल के अंदर के कैदी जो है ना, उसका वायुमंडल अलग है। 3500 कैदियों में से कैदी है 200-300 तो विदेशी है। मैंने उनसे पूछा कि विदेशियों को आप क्या खाना खिलाते हो, क्या उनको रोटी, वो रोटी नहीं खा सकते, उनको ब्रेड देते हैं, बाकी तो हमारे जो रोटी के सिवाय ब्रेड, दाल, चावल, सब्जी यही देते हैं। तो हमने कहा वो खाते होंगे, तो कहा थोड़े दिन नहीं खाते, कहते ये हम आपको नहीं खाते हैं, हम तो ये खाएंगे, हमारे को तो वेस्टर्न ब्रेड चाहिए, सैंडविच चाहिए, पिज्जा चाहिए। कहते थोड़े दिन में वहां तो यही मिलता है और कोई मिलता नहीं है, तो आस्ते आस्ते वो लोग ये खाना शुरू कर देते हैं। तो जेल की दुनिया अलग है, उस दुनिया के अंदर जाकर के सेवा करते हैं, कैदियों की सेवा जो करते हैं, हमारी बहनों ने जाकर के किया हुआ है, वो अलग दुनिया है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें जब होती है, उसकी सेवा के लिए हमारे पास ट्रेनिंग का कारोबार होना चाहिए। इसको शॉर्ट में कहे, इस प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट की कारोबार के लिए इसकी ट्रेनिंग का कारोबार होना चाहिए। और ऐसा ट्रेनिंग का कारोबार करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, लोग जो है फौरन हमारे साथ कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। दुनिया में स्थूल जाकर के सहायता देते हैं, उसमें क्या फायदा, वो भी जरूरी है, हमारे पास हमारे करुणा भाई आदि गए थे और तमिलनाडु के जहां नागपट्टनम आदि शहरों में जहां नुकसान बहुत हुआ है वहां जाकर के बांटा हुआ है। दो तीन साल पहले जब कच्छ में भूकंप हुआ था तो वहां भी जाकर के हमारे बहन भाइयों ने बांटा हुआ था और सेवाएं की थी, लोगों ने भी हमको मदद बहुत किया और हमने हमारे द्वारा लोगों ने भी अपना धन को सफल किया। उस टाइम पर भी कच्छ में भी जब हुआ तब तो साउथ अफ्रीका से अपना एक भाई है मोहन भाई, उसने भी वहां की सरकार की तरफ से 300 टन सामान जो है भेजा था और कहा कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही उसको बांटने का है, क्योंकि सरकार के ऑफिसरों के द्वारा बांटते हैं ना तो कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे साधन जो है इस समय पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इतना ताकत वाला जो है ना कार्य वो करना चाहिए। मैंने आपको ये आपको बता रहा था कि ये पृथ्वी जो है ऐसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है और फिजिकल नॉर्थ जो है इतनी ताकत इसके अंदर थी कि ये जो मैग्नेट जो अंदर जो है पृथ्वी के अंदर ये जो है ना 40 मीटर ऐसा खिसका हुआ है 40 मीटर। जो बाबा जो कहते हैं ना कि ये मैग्नेट जो है वो सीधा हो जाएगा तब पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की बातें होगी। तो ये अंदर का मैग्नेट कैसे हिल सकता है उसके बारे में आज के वैज्ञानिक को मालूम नहीं था। ये पहली बार इतना भूकंप आया है कि वो उन्होंने मालूम कर एक्सेप्ट कर लिया है कि 40 मीटर वो ऐसा मैग्नेट ऐसा खिसका हुआ है सेंटर पर। तो किनारे पर तो बहुत लंबा बहुत जगह बहुत उसमें वो खिसका हुआ है। तो ये पृथ्वी के अंदर भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है वो आज का वैज्ञानिक लोगों ने इसके द्वारा माना हुआ है। शास्त्रों में भी इसके बारे में रेफरेंस है कि पानी के द्वारा जो होगा पृथ्वी में पांच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, उसके अंदर पृथ्वी जो है पृथ्वी में इतनी ताकत है, कुदरत में इतनी ताकत है, इसके बारे में भी है, शास्त्रों में भी है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे ना उनको मालूम होगा शास्त्र में तीन अवतार जो है ना उसका सीधा ही पानी के साथ और पृथ्वी के साथ कनेक्शन है। दस अवतार तो सुना होगा ना, दस अवतार मालूम होगा ना, श्री कृष्ण का भी अवतार, राम का भी कहते हैं, बुद्ध का भी कहते हैं और कल्कि अवतार इस प्रकार से कहते हैं, पीछे वामन अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया। उसमें से पहले तीन अवतार जो है ना, ये पहले तीन अवतार पानी के साथ कनेक्शन में है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, सुना होगा सबने भक्ति किया, जिन्होंने भक्ति किया होगा उनको मालूम होगा दस अवतार मालूम है ना। पहला अवतार मत्स्य अवतार कैसे हुआ, एक सन्यासी जो है नदी किनारे स्नान कर रहा था और तर्पण कर रहा था तो उसके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। तो उसने देखा ये छोटी मछली को तो अगर मैं ऐसे फेंक दूंगा तो वो बड़ी मछली उसको खा जाएंगी। इसलिए उसने उसके पास कमंडल था, सन्यासियों के पास कमंडल होता है मालूम है ना, तो वो कमंडल के अंदर रख दिया। घर पे आया, घर के अंदर कुआं था उसमें डाला तो मछली तो बड़ी हो गई तो कुएं में भी नहीं रह सकती थी। तो फिर शहर के नजदीक में नदी थी, नदी में जाकर के डाला तो नदी में भी बड़ी हो गई, नदी में भी ना रह सकती थी। तो फिर समुद्र किनारे लेके गया और समुद्र में उस मछली को डाला, ऐसा शास्त्रों में गायन है। तो जब मछली को समुद्र में डाला हुआ है तब उस मछली के द्वारा आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी को उसने सुना। उसने कहा कि मैं साधारण मछली नहीं हूं परंतु मैं मछली के रूप में अवतार लिया हुआ परमात्मा हूं। और थोड़े समय के बाद पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय होने वाला है, माना जल के द्वारा प्रलय होने वाला है, इतनी बारिश आएंगी और भी कई बातें होंगी जिसके कारण पानी के द्वारा प्रलय होगा। और उस समय की तैयारी के लिए आप एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, बहुत बड़ी नाव बना करके उसके अंदर आज की दुनिया के जितने भी जड़ी बूटियां हैं, बीज है, एसेंस है, जिसके आधार पर नई जगह पर जाकर के नई सृष्टि की रचना हो सके। ऐसे करो, इकट्ठा करो, तैयार रखो और छह पुरुष और एक अरुंधति स्त्री और सात लोग उसमें बैठो और फिर मैं आऊंगा मछली के रूप में और मछली को खींच करके फिर नई दुनिया की तरफ लेके जाऊंगा और फिर आप लोग के द्वारा नई सृष्टि का निर्माण होगा। और इन सात ऋषियों ने जो कर्तव्य किया, छह पुरुष और एक स्त्री, इनका आज भी आकाश के अंदर सप्तर्षि जिन्हों को आकाश दर्शन करने का अनुभव होगा, अभ्यास होगा, शौक होगा, उनको मालूम होगा आकाश में भी सात सितारे हैं, धनुष के आकार में भी है और तीर जो होता है बाण एरो होता है ना उसके आकार के, वो सप्तर्षि आकाश में भी हैं, वो उनकी यादगार है ऐसा दिखाते हैं। इस अवतार का कार्य यही है कि इस प्रकार से जल प्रलय के द्वारा विश्व परिवर्तन होने वाला है। बाबा ने भी कहा हुआ है कि आप बच्चों के द्वारा इस दुनिया की जो भी एसेंशियल चीजें जो है वो आप बच्चों के रूप में बुद्धि के द्वारा तैयार करा रहा हूं और आपके द्वारा ही ये फिर नई सृष्टि की कलम लगेंगी। तो नई सृष्टि की कलम के लिए हम बच्चों को बाबा तैयार कर रहे हैं। तो ये मत्स्य अवतार जो हिंदू माइथोलॉजी में है, इसी प्रकार से क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भी यही बात है। आप जाओ, मैं तो गया हूँ रोम में, रोम के अंदर वेटिकन म्यूजियम है, वेटिकन म्यूजियम में वहां के बहुत नामी ग्रामी कलाकार थे रफाइल करके, रफाइल के चित्र है वहां पर मत्स्य अवतार के माफिक, उन्होंने मत्स्य अवतार का अंग्रेजी नाम दिया हुआ है, उनकी क्रिश्चियन बाइबल आदि में लिखा हुआ है नोहाज आर्क, नोहा करके एक चीज हो गई है, उसका आर्क मतलब जैसे चंद्रमा के ऐसे तार वो होता है ना, कलाएं होती है ना, उस प्रकार उसको आर्क कहते हैं। तो नोहाज आर्क के रूप में वो बताया हुआ है कि चित्र है जिसमें समुद्र किनारे गए हुए हैं, एक व्यक्ति गई है और वहां पर उनको मालूम पड़ता है कि थोड़े समय में जल प्रलय होने वाला है, उसको ऐसी सावधानी मिलती है और फिर उन्होंने को ये भी मिलता है कि जो यहाँ मत्स्य अवतार में है ना वही बात वहां पर है। और कहा गया कि एक बहुत बड़ी नाव बनाओ और उस नाव के अंदर वर्तमान सृष्टि की सब चीजें इकट्ठी करो और इकट्ठी करके फिर वो मछली आएंगी और मछली आपको खींच करके नई दुनिया के प्रति लेके जाएंगी और आपके द्वारा नई सृष्टि की रचना होगी, निर्माण होगा। तो क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म दोनों जो है उसके अंदर ये मत्स्य अवतार अर्थात जल प्रलय की बातें हैं। ऐसा दूसरा अवतार है वराह अवतार, मालूम है ना, दस अवतार में पहला मत्स्य अवतार, दूसरा वराह, तीसरा कूर्म अवतार। तो ये जो है ना वराह अवतार जो है कि पृथ्वी जो है वो समुद्र के अंदर डूब रही थी, डूब रही थी, डूब रही थी, गिर रही थी, तो उसके समय पर परमात्मा जो है वराह के रूप में आए। वराह माना गेंडा होता है ना, जिसके आगे नाक जैसा वो सिंह होता है, तो उस प्रकार से वराह जैसा था, गेंडा जैसा होता है, सिंह वाला नाक ऐसा होता है, उसके ऊपर वो पृथ्वी को नीचू गया वराह और पृथ्वी को खींच करके समुद्र से ऊपर बाहर पानी के बाहर लाया और फिर पृथ्वी के ऊपर सुख शांति हुआ। अर्थात ये अवतार का भी यही कार्य है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा भारी प्रलय होगा और उस टाइम पर पृथ्वी को दुख अशांति से बचाने के लिए परमात्मा ने वराह के रूप में अवतार लिया। तीसरा अवतार भी पानी के साथ कनेक्शन में है, विनाश के साथ में कनेक्शन में, ऐसा तीसरा अवतार है कूर्म अवतार, कछुआ। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा होगा उनको मालूम होगा एक के बाद एक तीसरा अवतार है कूर्म अवतार, कछुआ का अवतार, मालूम है, भक्ति नहीं किया है ना तो सीधे आ गए उनको ये मालूम नहीं पड़ेगा। जिन्होंने भक्ति किया है हमारे जैसे, हम हमारे बारे में परिचय में बताया ना, हमने फिलोसॉफी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी किया हुआ है और मैं प्रोफेसर भी था, तो ये कूर्म अवतार जो है ना कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन के समुद्र से उसमें से अच्छी अच्छी चीजें मिल जा रहे, 14 रत्न मिले हैं, उसमें पॉइजन भी मिला तो लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हुई है, कौस्तुभ मणि निकला है, पांचजन्य शंख निकला है, इस प्रकार से 14 प्रकार की चीजें अंदर से निकली हुई है। तो इन्होंने क्या किया, पर्वत लिया, एक पर्वत नाम तो मैं भूल गया हूँ, और पर्वत के बाद उसके ऊपर जैसे वो पहले जमाने में छाछ बलों छाछ के लिए बहने जो है ना रस्सी से ऐसा ऐसा करती थी। हाँ बहनों को मालूम होगा पहले जमाने में छाछ कैसे बना देती, गुजराती में इसको कहते वलोवन, मतलब ऐसे मंथन करना होता है, ऐसे ऐसे रस्सी से ऐसा करते। आप लोगों ने भक्ति मार्ग में देखा होगा कि यशोदा मैया जो है ऐसा ऐसा कर रही है और श्री कृष्ण मक्खन जो है उसमें से खा रहा है। देखा है भक्ति मार्ग में चित्र मंथन करने का, छाछ का मंथन करने का। तो ऐसा जो मंथन करने का होता है ऐसा दानवों ने क्या किया, वासुकी नाग जो था वो मंदाकिनी पर्वत या ऐसा कुछ पर्वत है वो पर्वत के बनाया उसके द्वारा मंथन। मैं आपको बता रहा था समुद्र मंथन के बारे में, वासुकी नाग को पकड़ा है उसका मुख का साइड जो है देवों ने पकड़ा, पूंछ का साइड दानवों ने पकड़ा और दोनों ने सबने मंथन शुरू किया, मंथन शुरू किया और समुद्र से जो रत्न एक के बाद एक निकलने लगे और उसमें पहले पॉइजन निकला। पॉइजन को क्या करेंगे इसके बारे में संस्कृत में एक श्लोक भी है, संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ा है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें है कपड़े की क्या कीमत है, कपड़े की क्या कीमत है, उनसे क्या पर्सनालिटी बनती है, ऐसा कवि को एक प्रश्न पूछा गया कपड़े की क्या कीमत है। तो इन्होंने बताया, कवि ने बताया कि कपड़े की बहुत कीमत है। दिगंबरम ददाति हला हला, संस्कृत में कहते हैं मतलब शंकर दिगंबर कपड़ा पहना हुआ नहीं, आप जानते हैं कौपिनधारी शंकर होता है तो उसकी बेचारे की पर्सनालिटी नहीं है तो इसके लिए उसको पॉइजन मिला। और पीताम्बरम ददाति लक्ष्मी ही, विष्णु फुल्ली ड्रेस फैशनेबल पीताम्बर आदि कितने जेवर आदि पहना हो पक्का प्योर, सबसे ज्यादा में ज्यादा फैशनेबल कोई हो तो विष्णु है, कितनी ज्वेलरी कितना ज्वेलरी कितनी पहनी हुई होती है विष्णु के ऊपर चित्रों के ऊपर। आप जाकर के देखो हमारे लंदन के लिए हम लोगों ने बनवाया इंद्र शर्मा के द्वारा चित्र, कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, कितनी महंगी ज्वेलरी है। उसको देख करके उसको लक्ष्मी मिली, तो इसलिए पीताम्बर पहना हुआ तो लक्ष्मी मिली, बेचारे शंकर ने कुछ नहीं पहना था इसके लिए पॉइजन मिला, ऐसे संस्कृत में श्लोक है। कहने का तात्पर्य यही है कि समुद्र मंथन जो हुआ रत्न उसमें से निकले हैं और आगे चल करके यही होगा। अभी तो खाली इतना सुनामी वेव्स हुआ 10 फुट रेती आ गई, आगे चलकर समुद्र के अंदर अनेक प्रकार की बातें गई हुई है। आपको मालूम नहीं होगा रॉबर्ट क्लाइव करके एक गवर्नर हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव जिसने वहां पर बंगाल के साइड में रहा हुआ था और उन्होंने ही बहुत कूटनीति आदि अपना करके बंगाल के कई स्थान जो है उसके ऊपर अपना कर लिया और वहां पर ही युद्ध हुआ। उसमें कौन सिजाउद्दौला या किसका था उसके वहां उनका वजीर था अमीचंद, और अमीचंद जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गया और बेचारा वो हार गया और उसके आधार पर अंग्रेज लोगों ने पहला अपना किला जो है बसाया था। इस प्रकार से उसने बहुत कुछ करप्शन में बहुत कुछ सोना इकट्ठा किया हुआ था और वो सोना इकट्ठा हुआ जब वापस वो इंग्लैंड जा रहा था, वो उसका रॉबर्ट क्लाइव के जीवन चरित्र पढ़ने जैसा है, उसने बहुत सोना इकट्ठा किया होता, एक जहाज भर करके सोना इकट्ठा किया था, इतना इकट्ठा सोना उसके पास था। अब वो इंग्लैंड में साथ में लेके जाएंगे तो पकड़ा जाएगा, वहां की पुलिस उसको पकड़ लेंगे, ए तुम इतना सोना कहां से लाया। इसलिए उसने क्या किया कि एक जहाज में बैठ करके वो गया रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे जहाज में सारा सोना भर करके लेके गया था ना वो उसने उसमें रखा और कहा कि 3-4 दिन के बाद वो निकला। उसके बाद उसका दूसरा हवाई दूसरा पानी के जहाज में वो सोना निकला, वो तो वहां पर पहुंच गया परंतु सारे जहाज भर करके जो सोना था ना वो सोना का जहाज जो है ना गोल्ड वाला जहाज वो पानी में डूब गया। जब उसको वो इंग्लैंड में मालूम पड़ा तो वो उसने कहा अरे क्या हो गया मेरा सारी संपत्ति पानी में डूब गई, और उसके कारण वो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने को गोली लगा करके अपनी आत्महत्या कर दिया, ऐसा कहानी है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक रॉबर्ट क्लाइव के पास सारा जहाज भर करके उसने सोना यहाँ पर करप्शन में इकट्ठा किया था तो पानी में चला गया। ऐसे बहुत सी संपत्तियां समुद्र में है। जो बाबा कहते हैं ना सोने के महल आदि बनेंगे, वो सोना कहाँ से आएगा? जो समुद्र में गया हुआ है वो सारा ही उस टाइम पर आएगा। बहुत कुछ समुद्र से वापस मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि समुद्र के साथ, पानी के साथ, डिजास्टर के साथ, ये पृथ्वी के कनेक्शन के, शास्त्रों के कनेक्शन के तीन तीन अवतार हैं। तो ऐसे अवतार के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? यही है कि ऐसा वेव्स आ जाए। हमारे पास एक मूवी है, उसमें फोटो आए हुए सारे विनाश के, लास्ट में एक चित्र है कि थैंक गॉड कि वी वेर नॉट देयर व्हेन सुनामी वेव्स स्ट्रक दिस आइलैंड। मतलब सुनामी वेव्स के द्वारा हमारे ऊपर जब वो पृथ्वी के ऊपर आए, चाहे नागपट्टनम में, मद्रास के कनेक्शन में, या श्रीलंका में, श्रीलंका में भी बहुत लोग मर गए, हजारों लोग, 30-40 हजार लोग मर गए उधर त्रिंको माली आदि में। तो इस प्रकार से भगवान, उसने आखिर में लिखा हुआ है जिसने वो फिल्म बनाई है कि ये भगवान बहुत आपका शुक्रिया कि जब मैं वहां था ना तब वो सुनामी वेव्स नहीं आए। इस प्रकार से अगर ऐसा सुनामी वेव्स आ जाए तो प्रश्न दूसरा ये है हमारा कि क्या हमने हमारा तन मन और धन को सफल किया है? कल ही बाबा ने अपने हम सबको वार्निंग दे दिया कि ऐसी प्रचंड शक्ति वाली आपत्तियां, आफतें जो है बहुत अभी आते रहेंगी। तो इसलिए इनसे हमें सीखना होगा। आपत्ति आ जाए और उसके बाद हम सफल करने को कहां जाएंगे? हो सकेगा? जितने इतने 1.5 लाख लोग जो मर गए उसका क्या हुआ? उनका तन भी गया, मन भी गया, तो धन भी जो है ना वो सारा ही खत्म हो गया। तो ऐसा, तो हमारा ऐसा खत्म हो जाए वो हमको मंजूर है या उसके पहले हमको सफल करना चाहिए? ये एक प्रश्न है। तो इसलिए इनसे हमें सीखना होगा ना कि हम अपने तन मन धन को भी सफल कर दे, नहीं तो क्या हो जाएगा। हमारी मातेश्वरी जो है ना हमेशा ही कहती थी, मातेश्वरी ने चार बातें कही थी, सिंधियों में कहावत है कि किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग जलाए। किसकी दबी रही धूल में, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, और इस प्रकार की चार बातों के द्वारा अंत में नुकसान होने वाला है। दबी रही धूल में माना अर्थक्वेक आदि जो भी है, इनके द्वारा जो भी हमारी चीजें सब खत्म हो जाए, चोर लूट जाए, राजा ले जावे, या अग्नि के द्वारा खत्म, जल के खत्म हो जाए, इनसे पहले हमें अपना सफल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ऐसी विनाश के समय पर हम क्या सेवा कर सकेंगे? जो भी करना है अभी से ही करना है। ये हमको मालूम है कि कल्प की बाजी अभी हमारे हाथ में है। सारा भविष्य का, कल्प का हमारा पार्ट क्या है, उसका निर्माण करने वाले हम ही है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है कि आपके भविष्य का आप ही ब्रह्मा है। विश्व का परिवर्तन का लिए हमारे ब्रह्मा बाबा है, परंतु हमारा भविष्य कौन बनाएगा? जब हम लोगों ने योग की प्रदर्शनी बनाई तब मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा ये योग की प्रदर्शनी का लास्ट का चित्र आप बना करके भेजो। बाबा बहुत अच्छे कवि भी है, बहुत अच्छे लेखक भी है, बहुत अच्छे आदर्श चित्रकार भी थे। तो बाबा ने विनाश का दृश्य जो है, पृथ्वी जो है मृत्यु शैया पर सोई हुई है और ऊपर से एटम बम गिर रहा है, और फिर क्या है वो एक पानी जैसे वो ब्रह्मा कुमारियां ज्ञानामृत डालती है, एक कान से डालती है दूसरे कान से निकल जाता है, उस प्रकार का चित्र आप लोगों ने देखा होगा कई सेंटरों पर, वो चित्र पुराना है ये। और इसके बाद में नीचे में वो योग के लास्ट चित्र में ब्रह्मा बाबा ने लिखवाया था कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। हमारा भविष्य, हमारा भविष्य कितना भी, जितना श्रेष्ठ बनाना है, जो भी बनाना है, जैसा भी बनाना है, वो हमारे हाथों में है। हमारा भविष्य परमात्मा भी नहीं बना सकता है। बाबा ने भी मुरली में कहा है, अभी क्या कल भी साकार मुरली में, कल या परसों में था ना, आपका दिवाला निकल जाए या बीमार हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं है। कल की मुरली में ऐसा मैं समझता हूँ, दिवाला निकल शब्द बोला, दिवाला जितने तक में इतनी भी आपत्ति आ जाए, बीमारियां आ जाए, ये सबके लिए आप ही जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार नहीं है। बाप तो ज्ञान देने के लिए जिम्मेदार है, परंतु ज्ञान के आधार पर अपना भविष्य कैसे बनाना है वो हमारे हाथों में ही है। इसलिए बाबा ने वो पिक्चर बनवाया, उसमें नीचे में लिखवाया, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य विधाता आप हो। हमारा भाग्य, बाबा आपको मदद कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन टेक हॉर्स टू ए रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स, हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर फॉर इट सेल्फ। माना एक घोड़ा है, घोड़ा समझते हैं ना हॉर्स, उसको पानी पीने की तरह प्यास लग गई, आप नदी किनारे उसको लेके जाते हो, परंतु पानी कौन पिएगा, तो उसकी प्यास बुझेंगी। आप पानी पिएंगे तो क्या घोड़े की प्यास बुझेंगी, आपकी प्यास बुझेंगी, घोड़े की तो नहीं। घोड़े को तो खुद को ही पानी पीना पड़ेगा, तब ही उसकी प्यास बुझेंगी। इस प्रकार से हमारा भविष्य तो हमको ही बनाना होगा। अपने आप से पूछिए, हाँ, बाबा ने कई बार साकार मुरली में कहा है कि मुझे अगर पूछे, बच्चे आकर के पूछे कि अब तक का हमारे पुरुषार्थ के आधार पर अगर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या भविष्य होगा, क्या प्रारब्ध बनेगा, ये बाबा से पूछेंगे तो बाबा बता सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर था मधुबन में और बाबा ने वो मुरली चलाई, तो मैंने मुरली के बाद कहा, बाबा आपके पास तो आज लाइन लग जाएंगी, सब कहेंगे बाबा आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या भविष्य होगा। बाबा ने कहा, कोई बच्चा नहीं आएगा, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वास्तविकता को फेस करे, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है, कोई नहीं, सभी ऐसे ही अपने आप में स्वप्न में मनगढ़ंत बातों में रहे हुए हैं कि लक्ष्मी नारायण तो मैं ही बनूंगा। बाबा ने कहा, तो अच्छा हुआ कि पहला लक्ष्मी नारायण की तो सीट नक्की हो गई है, नहीं तो सभी ऐसा ही समझते कि मैं ही पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनूंगा, ऐसे ही ख्वाब में सब रहते हैं, कोई वास्तविकता को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरे मुझे पूछने को नहीं आएंगे। और भी मेरे संतरी दादी को भी पूछा बाद में जाकर के कि कितने लोग पूछने को आए बाबा को, बाबा ने जो संतरी दादी ने भी बताया, किसी ने भी पत्र भी नहीं लिखा कि बाबा आज आपने जब कहा है कि आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या भविष्य होगा वो हमको बताइए। ऐसा वास्तविकता का सामना करने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं थी, उस समय के जितने भी बहन भाई थे किसी ने भी बाबा से नहीं पूछा। ये करुण वास्तविकता है कि हम वास्तविकता से दूर भागते रहते हैं, दूर रहते हैं और अपने आप को ख्वाब में रखते हैं। क्या जब बाबा क्लास में सवाल पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता, तो सब लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ खड़ा करते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि हमारा वर्तमान, अपने आप से पूछिए। मैं बाबा ने आगे चल करके यही हमको कहा कि बच्चे, सब बच्चे अंदर से जानते हैं कि अपने पुरुषार्थ के आधार पर क्या उनका भविष्य का पद होगा, कोई बाबा के पास पूछने के लिए क्या जरूरत है, सब जानते हैं अपने अंदर कि अपना पुरुषार्थ के आधार पर, इतना पुरुषार्थ के आधार पर क्या वो प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, या राजा रानी बनेंगे, या विश्व महाराजा महारानी बनेंगे, सब अंदर से जानते हैं। अपने आप से पूछिए कि इतना जितना भी सेवा किया है, जितना भी अपना तन मन धन सफल किया है, उसके आधार पर क्या हम विश्व महाराजा विश्व महारानी बन सकते हैं? अब नहीं करेंगे तो कब करोगे? पिछली मुरली में बाबा ने कह दिया कि भी चलने के ही नहीं है, अभी तो समय, वो भी तो समय पर मंजिल पर पहुंचना है, तो उड़ती कला होनी चाहिए। कहां तक कर, कितने तक हमारी उड़ती कला हुई है, अपने आप से पूछो। उड़ती कला नहीं की हुई है तो हम जो हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, प्रारब्ध है, वो कब बनेगा? बाबा ने तो ये भी कहा हुआ है कि अभी का पुरुषार्थ के आधार पर सत्यों के आदि रतन मना पहला जन्म से आना चाहिए। एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता रो रही थी, तो बाबा ने उनसे पूछा, अव्यक्त बाप दादा ने, कि बहन की बच्ची क्यों रो रही है? तो वो बहन ने कहा कि बाबा, मैंने आपको साकार में नहीं देखा इसलिए मैं रो रही हूँ। आप में से भी कहीं ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को नहीं देखा होगा। तो आप जैसे वो भी थी, वो रो रही थी, तो बाबा ने कहा कि अभी क्यों रो रही है, अब तो तू साकार में मुझे मिल रही है, फिर क्यों रोती है। तब बाबा ने उसको कहा कि कहीं ऐसे बहन भाई है कि वर्तमान का सुख भूतकाल की दुखी की बातों के आधार पर वर्तमान को भी वर्तमान का सुख नहीं अनुभव कर सकते हैं। पिछली बातों के आधार पर बाबा साकार को नहीं देखा समझ करके रो रही थी, और साकार में सामने में अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में उनको मिल भी रहे, वो मिलने का सुख नहीं ले रही थी, परंतु नहीं मिली उसका दुख का अनुभव कर रही थी, रो रही थी। ऐसे कई हमारे महावर्ती भाई बहन हैं, रो रहे हैं भूतकाल की बातों को याद करके। भूतकाल को बिंदी लगानी चाहिए वो नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। और फिर बाबा ने उस माता को कहा कि बच्ची अभी भी मार्जिन है, अभी भी मार्जिन है कि सत्युग के आदि से सृष्टि पर आने का पुरुषार्थ करो। अगर वो भी पुरुषार्थ नहीं किया और पहले नंबर पर पहले जन्म से पहले सृष्टि के आदि से नहीं आई तो क्या हो जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में उसको सावधानी दिया, तो कहा हमेशा के लिए सारा ही कल्प, हर कल्प तुम ब्रह्मा और सरस्वती को या लक्ष्मी और नारायण को चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में या मूर्तियों के रूप में ही देखती रहेंगी, उनके साथ साकार में अनुभव नहीं कर सकेंगी। अपना मेरा प्रश्न आप सबके यही हमने स्पार्क में भी डिजास्टर के ऊपर रिसर्च की हुई, उनके कई पेपर हमारे पास छपे हुए हैं, अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी है, आप जाना ऊपर स्पार्क की ऑफिस में, उसमें है कि सत्यु की आदि से पहले नंबर से पहला जन्म से ही हमको अपना जीवन बनाना है श्रेष्ठ, तो हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। वो पुरुषार्थ की सारी बातें उसमें लिखी हुई, उसके आधार पर अपने आप को नक्की करो कि ब्रह्मा सरस्वती को हमने साकार में नहीं देखा, परंतु तो लक्ष्मी नारायण को तो देखे। 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा। करीब 6-8 मास पहले साकार मुरली के अंदर बाबा ने एरिथमेटिक ऑफ बाबाज नॉलेज, गणित शास्त्र, बाबा का ज्ञान का गणित शास्त्र बताया था। बाबा ने उसमें कहा था कि सत्युग की शुरुआत में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता की शुरुआत में 14 कला संपूर्ण है, द्वापर की शुरुआत में 8 कला है, और बाद में चलते चलते अभी तो जैसे चंद्रमा की सामान्य कला रह जाती है, इतने अभी कलयुग में हो गए हैं। तो शुरू की जो दो युगों की कलाओं के बारे में बाबा ने कहा कि पहले सत्युग में 8 जन्म है, 8 जन्म में 2 कला कम होती है। गणित सारा गणित बताया था बाबा, एरिथमेटिक भी सिखाता है हम बच्चों को, तो 2 कला के लिए सारा 1200 वर्ष, माना 14 कला संपूर्ण आप बने तो सत्युग में नहीं आएंगे, आप कहां से आएंगे, त्रेता युग से आएंगे। माना 2 कला कितनी कीमती है हमारे जीवन के लिए, हमारा भविष्य के लिए, कि 2 कला अगर कम रहे 14 कला संपूर्ण बने तो पहले 8 जन्म चले जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण को मिल सकेंगे। हाँ, किसको मिलेंगे, राम सीता को मिल सकते हैं, अगर त्रेता में भी 14 कला भी संपूर्ण बने तो भी राम सीता को मिल सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं मिल सकेंगे। अरे 15 कला हुआ तो भी क्या होगा, 2 कला में 1250 वर्ष, तो 1 कला का 1250 वर्ष, माना 4 जन्म कम। माना पहला जन्म तो नहीं, पहले 4 जन्म, पहला लक्ष्मी नारायण, दूसरा, तीसरा और चौथा चले गए, और 5वें लक्ष्मी नारायण को आप देख सकेंगे। 15 कला संपूर्ण बने तो कितना महीन पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके ही आधार पर हम सत्युग की आदि प्रजा में आएंगे। फिर प्रजा में से ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो साहूकार, फिर उसमें करे तो रॉयल परिवार, उसमें से ज्यादा परिवार पुरुषार्थ करे तो विश्व महाराजन, इतना तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा ने ऐसा एक अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में भी सब में कहा हुआ है कि श्रेष्ठ पद पाना वो कहीं मासी का घर नहीं है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ तो करना ही होगा। तीव्र पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए कल की मुरली में जो बाबा ने जो सावधानी कही कि ऐसी बातें आने वाली है, उसके पहले क्या आप सबको लगता नहीं है कि 18 जनवरी की कल की मुरली सुनकर के हमारा पुरुषार्थ हमें तीव्र करना चाहिए। ये तो आप सब मानते हो ना, आपका पुरुषार्थ, आपका भविष्य तो आपको ही बनाना होगा, या आपका भविष्य बाबा बना देगा? बाबा ने कल भी कह दिया कि मदद है हिम्मत है बाप, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, कल कहा क्या नहीं? हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा, तो बाप की मदद होगी। हम लोगों ने क्या कर दिया है मालूम है? मैं बाबा को उसी टाइम पर मन में कहा, बाबा ये आपकी बात हम बच्चों ने गलत कर दिया है, हमने कह दिया है कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। ये वास्तविकता है, हिम्मत है बाप, बाबा आप हिम्मत रखो, हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। आप रोज रोज आपको ही चिंता है कि ये पांच तत्व कह रहे हैं कि हम कभी करें, एडवांस पार्टी आपको कह रही है, हमको कहां कुछ कह रहे हैं, हम तो एकदम, बाबा ने कहा हमारी स्थिति एकदम अचल अडोल वो है, हमको कुछ नहीं होता है, आप कितना भी कहो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको हमारे गुजराती में कहते हैं पत्थर के ऊपर पानी, कितना मुरली कितनी बातें हमने सुनी हुई है, कहां पर हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है? आती है अपने आप को पूछो, क्या हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं या पत्थर के ऊपर पानी होता है? हम बाबा ने जो लास्ट चित्र बनवाया ना, उसमें ब्रह्मा कुमारी ज्ञान अमृत यहां से डाल रही है और दूसरे कान से निकल जाता है, ये किसका चित्र है? हम सबका ही चित्र है। इतनी बाबा सावधानी देते हैं, इतने कल भी कितनी सावधानी दिया, कितना प्यार से कहा बच्चे रहम दिल भरो, कब बच्चे बेहद में आओ, कहां हम बेहद में आते हैं। बाबा ने कल भी कहा एक मास में 1 करोड़ बाबा इनाम देंगे, प्राइज देंगे हमको, प्राइज बाबा हमको ऐसा लोभ नहीं है, हम निर्लोभी है, हमको प्राइज वाइज नहीं चाहिए, हमको विश्व महाराजा भी नहीं बनना है, हमको ऐसा लोभ नहीं बाबा। इसको कहते हैं उल्टा ज्ञान उठाना। माफ करना जरा, मैं जरा बोलने में सख्त हूं, मुझे बहनों के माफिक मक्खन लगा करके बोलना नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता अरे वाह आपके सिवाय तो कोई और लक्ष्मी नारायण बन ही नहीं सकता, ऐसा मैं झूठा प्रॉमिस देने के लिए नहीं तैयार हूं। मैं तो आपके सामने दर्पण रखने के लिए तैयार हूं कि दर्पण में देख लो मुखड़ा, देख ले प्राणी तेरे, दर्पण में जो गीत है ना, इसमें अपने आप को देखो और इसके आधार पर, कल की मुरली के आधार पर नक्की करो कि हम आज अगर हमारा शरीर छूट जाए, आज इस प्रकार के सुनामी वेव आदि जो भी है इधर आ जाए, या कहां भी जहां भी आप रहते हो आ जाए, तो आपका भविष्य क्या होगा? इन सुनामी वेव आदि जो भी प्रकृति की बातें जो है, जिसके आधार पर हम बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं, उस सावधानी का कहां तक अपने जीवन में फायदा लिया है? हाँ, इसलिए अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ, ऐसा चित्र है, अभी नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो कब करोगे? समय तेजी से जा रहा है, इस प्रकार की सभी अव्यक्त मुरलियों में बाबा सावधानी दे रहे हैं। रहम दिल बनो बाबा ने कहा हुआ है, हाँ, इस सीजन की मुरली का आप देख लीजिए, रिवाइज करिए, एक के बाद एक समान और सम्मान की बातें कही हो, वो कहां हमने किया है? हम तो अपने ही कारोबार में, मैं आपको सच बताता हूं, वर्तमान की समस्याओं से हमारे दैवी परिवार के बहन भाई 85% 90% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में ही उसके अंदर बिजी है, उसको अपना भविष्य का कारोबार करने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है, ये वास्तविकता है। बाबा ने लोभ, लोभ के बारे में कहते हैं ना, बाबा ने तो लोभ के बहुत सुंदर परिभाषा दिया है कि जीवन की जरूरत से ज्यादा धन रखने की जरूरत नहीं है, इसके बदले में ईश्वरीय सेवा के द्वारा अपना भविष्य बनाओ ना, अपने पुरुषार्थ के द्वारा बनाओ, वो करो, उसके बदले में हम वर्तमान की समस्याओं से ऊपर नहीं आते तो भविष्य का प्रारब्ध हम कब बनाएंगे? इसलिए आप सबके सामने ये बात इसलिए मैंने रखी है, मैंने बहनों को कहा कि आप मेरे को टॉपिक देते हो तो ये दीजिए कि मैं सभी भाई बहनों को कहूं कि पुरुषार्थ में तीव्रता लाइए, समय की सूचना। अभी तो लोग भी अज्ञानी लोग भी मानने लग गए हैं कि विनाश हो सकता है, विनाश हो सकता है, विनाश हो सकता है। उस टाइम तो अभी हम जागे, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, आप ही बताओ। अब अपना जीवन तन मन धन को सफल नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और अंत के दिनों में आप पैसा बाबा को धन लाकर देंगे, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। अभी भी हम कईयों का धन को मना कर रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जमीन कितनी ऑफर हो रही है, 200-200 एकड़ जमीन ऑफर हो रही है, हम मना कर रहे हैं। आज ही एक बहन का जमीन का आया था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हमको जमीन नहीं चाहिए ऐसी। फिर भी अगर आप बहुत फोर्स करते हो तो हम देखेंगे ईश्वरीय सेवा के लिए जमीन लायक है या नहीं, नहीं तो आपको जो भी करना हो आप करिए। आपका भविष्य को सफल करने के लिए हमने ठेका नहीं उठाया है। आपका भविष्य को सफल करना हो, आपका धन को सफल करना हो, आपको भविष्य बनाना हो, आपको ही पुरुषार्थ करना होगा। हम आपके बीच में नहीं आएंगे, हमारा ये कार्य नहीं है कि आपके तन मन धन को हम सफल करके बतावे, आपको करना है, नक्की करना है। आज ही एक प्रश्न आया, एक भाई ने लिखा है मेरा मकान है मकान अगर बेचेंगे तो 35 लाख रुपया आएगा, परंतु मैं उसमें रहता हूं तो कैसे सफल करूं। मैंने कहा ये आपका प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है। आप रहते हो और सफल कैसे करना चाहिए आपको नक्की करना है। अगर सफल करना है तो छोटा मकान ले लो, 35 लाख का मकान बेच दो, जितना है बाकी का धन सफल करो। बाकी 35 लाख के मकान में भी रहना है और मकान को सफल भी करना है, वो कैसे होगा, होगा सफल। अपना धन हमारे गुजराती में कहावत है, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा हम चाहते हैं, ये कैसे होगा। मेरा को तेरा करो ना, इसके बजाय हम तेरा को मेरा करने के लिए पुरुषार्थ में निकले हुए हैं। इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा, आज मैं सुबह का ये काम कर रहा था, मैंने उनको लिखा कि भाई आपको सफल करना है तो आप जानो, हम कैसे जाने। आपको करना है, आपको अकेले हो, वाइफ मर गई है, बच्चे सब सफर बड़े हो गए, अपने आप है करते हैं, कहता है मैं 35 लाख का मकान कैसे सफर करूं मरने के बाद। मैंने कहा मरने के बाद कैसे होगा, आपके बच्चे लोग जो है उसके साथ झगड़ा करेंगे, नहीं 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 मेरे बाप ने क्यों दिया, तो हम आपके झगड़े में नहीं पड़ने वाले। आपको अपना जितना जितने जीते जी सफर करो वो करो, बाद में झगड़ा होगा, बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया है किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ने का। हमारा ये धंधा ही नहीं है कि आप झगड़ा आप छोड़ के जाओ और उस झगड़े को दूर करने के लिए हम मेहनत करें, वो गलत बात है। आपके प्रॉब्लम्स आपको ही दूर करने होंगे, इसलिए हमने लिखा उनको कि आपको जो करना हो मकान बेच दो, छोटा मकान लेकर के बाकी का धन सफल करना चाहो जो करो, बाकी आपके मरने के बाद आपका धन सफल होगा नहीं होगा उसका हम ठेका नहीं ले रहे, ये वास्तविकता है। इसलिए जितना हो सके जितना जीते जी कर सकते हो सफर करो तन मन धन को, नहीं तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। वो जो है ना शंकराचार्य ने कहा हुआ है, भज गोविंदम प्राप्त प्राप्त भज गोविंद मुरुमते प्राप्त सन्नीते मरणे नहीं नहीं डुकरी करणे। अभी तो एकदम विनाश का नगारा सामने बज रहा है, उस टाइम तो हम जागे। कल भी बाबा ने कहा ऐसे सावधानी दिया, वार्निंग दे दिया, इनसे ज्यादा क्या बाबा वार्निंग देगा। क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक जो है वो रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसलिए इनसे ज्यादा बातें बाबा हमको बता नहीं सकते हैं। इतना ही बता सकेगा कि ऐसी आपत्तियां दिन प्रतिदिन अभी बढ़ती जाएंगी, इनसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे बाबा। नहीं तो सृष्टि रूपी नाटक आर्टिफिशियल हो जाएगा। आपत्तियां जो है कोई भी आपत्ति कह करके नहीं आने वाली, ये वास्तविकता आप नोट करके रख लो। कोई भी आपत्ति आपको पहले से इन्फॉर्म करके नहीं आएंगी, इतनी ही बाबा सावधानी दे सकता है, इनसे ज्यादा नहीं दे सकता है। और कभी आपत्ति आएंगी मालूम नहीं है। बहुत सुंदर एक बात है, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना तो एक पार्टी यहाँ पर थी और वो गई और मम्मा ने रात को शरीर छोड़ा, तो जो पार्टी गई तो उसमें से एक भाई ने बाबा को लिखा, बाबा आप कहाँ के त्रिकालदर्शी हो, आपकी फर्ज है कि क्या आपको कहना चाहिए कि आपकी मम्मा कल आज रात को शरीर छोड़ने वाली है, आप नहीं जाओ, आप यहाँ रह जाओ, आप बॉम्बे की पार्टी थी, आप बॉम्बे नहीं जाओ, यहाँ रह जाओ, ऐसा आपकी फर्ज थी आपको हमको कहने के लिए। ये तो हमने मम्मा के अवसर का जो समाचार बॉम्बे आकर के सुना, इसमें गलती आपकी है, आपने क्यों हमको बताया नहीं। ऐसे उल्टा बाबा के ऊपर ऐसा उल्टा आरोप बाबा को करने वाले। बाबा ने उनको लिखा कि मैं कभी कौन पहले मरने वाला है बाद में मरने वाला है वो कभी किसी को बताने वाला नहीं हूं। क्यों बताऊं, मेरी क्या फर्ज है, मैंने बता दिया आप यहाँ थे, बाबा ने कहा लिखा उनको, आप मम्मा के शरीर को देख रहे थे, उसकी परिस्थिति को देख रहे थे। और बाबा ने बहुत सुंदर एक बात उसमें वाक्य लिखा कि मैं अगर कहता कि मम्मा शरीर छोड़ने वाली है तो क्या आप बच्चे अपनी मम्मा को शांति से शरीर छोड़ने देते हैं, वो शांति से शरीर छोड़ सकती थी। आपके लिए आपकी मम्मा के बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी फर्ज है आपको रुकना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे मेरे को क्यों लेना देते हो। ये वास्तविकता है, बाबा कभी भी वास्तविकता की डिटेल्स नहीं बताएंगे, इतनी ही सावधानियां देंगे जितनी सावधानी कल दिया है। इन सावधानियों के द्वारा जागृत होना या नहीं होना वो हमारे हाथों में, जो जागेंगे सो पाएंगे, सोएंगे क्या होगा वो आप जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्या कहूं। इसलिए आखिर में यही कह रहा हूं कि कल की मुरली के आधार पर सावधानी धारण करके अपना भविष्य अपना प्रारब्ध बनाने के लिए हम जागृत हो जाए। बाबा ने जो कल कहा रहम दिल बनो आदि आदि, बेहद में आओ, हद की बातों को छोड़िए, हद की सेवाओं को भी छोड़ करके आगे बढ़ो, यही कल की मुरली का सार है। ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले।